आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का किया उद्घाटन, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को टूलकिट और चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने उन्नाव में 804 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के बीच हुआ समझौता। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, श्री राम मंदिर से जुड़ी दुर्लभ सामग्री को इस न्यास के द्वारा किया जाएगा संरक्षित। और प्रदेश भर में आज से मिशन इंद्रधनुष 5.0 के तीसरे चरण की हुई शुरुआत, गर्भवती महिलाओं और 5 वर्ष तक के बच्चों को लगाए जा रहे हैं टीके। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कालीन उत्पादों का अवलोकन करते हुए विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को टूल किट और चेक प्रदान किए, साथ ही बुनकरों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के साथ आगे बढ़ाने का जो दूरदर्शी लक्ष्य प्रस्तुत किया है, उसे भारतीय कालीन उद्योग तेजी से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ने उत्तर प्रदेश के निर्यात को केवल 4 वर्षों में ही लगभग 250 गुना बढ़ाने में मदद की है।
प्रदेश में लगभग 20 लाख बुनकर हैं जो इस पेशे के साथ जुड़े हुए हैं, और उन लोगों के कारण आज उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई थी, अकेले भदोही जनपद से 1550 कारीगरों के प्रशिक्षण और उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें उपलब्ध कराया। और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी जहां इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, वहीं यहां के उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर भी उन्हें लगातार सहयोग किया जा रहा है। और इसमें 8% जो एक्सपोर्ट होता है वह उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी के हमारे कारीगरों के द्वारा निर्मित कारपेट का होता है।
इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव जिले के डोंडियाखेड़ा में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने राजा राव रामबख्श सिंह के देश के प्रति उनकी सेवाओं को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री योगी ने जनपद की 804 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।
आज इस जनपद को 804 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात प्राप्त हुई। ये सड़क की भी है, बिजली की है, पानी की है, स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, और ये सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी तो उन्नाव विकास के नए पथ की ओर अग्रसर होगा। आज उन्नाव जनपद विकास के नए मानक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसका उदाहरण है। पहली बार बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना भी उन्नाव जनपद में बनी है।
अयोध्या में स्थित अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को सौंपा जाएगा। इस संबंध में आज प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा और महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी में भगवान श्रीराम के मंदिर से जुड़ी दुर्लभ धरोहरों, संरचनाओं तथा उत्खनन से प्राप्त विभिन्न अवशेषों को पूरे विश्व समुदाय के अवलोकन के लिए प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या में इस वर्ष दीपोत्सव को भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। पिछले वर्ष के 17.5 लाख दिए जलाने का अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 21 लाख दिए जलाए जाएंगे।
श्री राम जन्मभूमि न्यास उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के बीच में वह अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय जो संस्कृति विभाग का है उसको हम लोगों ने श्री राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने का काम किया है, जिसमें भगवान श्री राम और भगवान श्री राम के अयोध्या के मंदिर के बारे में और अन्य जो भी हमारी अमूल्य धरोहरें हैं उनको संरक्षित सुरक्षित रखते हुए उसको डिजिटली भी प्रदर्शित करने का काम होगा। देश और दुनिया के लिए वो एक अनूठा संग्रहालय होगा जिसका रखरखाव संरक्षण संवर्धन का काम न्यास के द्वारा किया जाएगा और ये समझौता आज हो गया है।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि आज देश में 9,827 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित हैं। इस योजना से लोगों को सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध हो रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री बघेल कल आगरा में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगरा में इस योजना के तहत संचालित अमृत फार्मेसी खोलने की अभी और आवश्यकता है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की कीमती दवाइयों को 50% तक कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध कराती हैं। प्रदेश भर में आज से मिशन इंद्रधनुष 5.0 के तीसरे चरण की शुरुआत की गई। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और 5 वर्ष तक के बच्चों के छूटे हुए सभी टीके लगाए जा रहे हैं। ये अभियान 14 अक्टूबर तक चलेगा। वाराणसी, बलिया, मऊ, इटावा, मुरादाबाद सहित विभिन्न जिलों में नगरीय, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सरकारी अस्पतालों में नवजात शिशुओं को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। कई केंद्रों पर बच्चों को टीके भी लगाए गए। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर आज लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मायावती ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में लिखा कि कांशीराम के संघर्ष से यूपी में बीएसपी की 4 बार सरकार बनी और यहां सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति की मजबूत नींव पड़ी। उधर प्रदेश कांग्रेस द्वारा कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर समाज के शोषित और वंचित वर्ग को सम्मान दिलाने के लिए दलित गौरव यात्रा निकाली गई, जिसे प्रदेश अध्यक्ष अजय राज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा संविधान दिवस 26 नवंबर तक चलेगी। आज विश्व डाक दिवस मनाया गया। आज से 13 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। विश्व डाक दिवस की इस वर्ष की थीम टुगेदर फॉर ट्रस्ट है। इस उपलक्ष्य में 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कल 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक लखनऊ में किया जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण के नेताजी सुभाष क्षेत्रीय केंद्र परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न भार वर्गों में फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन कुश्तियों की प्रतियोगिताएं होंगी। वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि इस प्रतियोगिता में देश भर के 11 प्रदेशों के डाक परिमंडलों की टीमों सहित 95 प्रतिभागी भाग लेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज वाराणसी और लखीमपुर खीरी में विभिन्न गांवों से अमृत कलशों को एकत्रित कर ब्लॉक मुख्यालय में स्थापित किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। लखीमपुर खीरी में भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। बलिया के चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोगों ने अमृत कलश में मिट्टी भरी। इस मिट्टी को संस्कृति मंत्रालय को सौंपा जाएगा। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण अधिनियम की खुशी में आज धन्यवाद मार्च निकाला। ये मार्च सर्किट हाउस से शुरू होकर कचहरी तक गया। धन्यवाद मार्च का नेतृत्व कर रही मुमताज बानो ने कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम के बाद महिलाओं का विधानसभा और संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, जिससे वे अपने मुद्दों को और जोर शोर से उठा सकेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का किया उद्घाटन, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को टूलकिट और चेक प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने उन्नाव में 804 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के बीच हुआ समझौता। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, श्री राम मंदिर से जुड़ी दुर्लभ सामग्री को इस न्यास के द्वारा किया जाएगा संरक्षित। और प्रदेश भर में आज से मिशन इंद्रधनुष 5.0 के तीसरे चरण की हुई शुरुआत। गर्भवती महिलाओं और 5 वर्ष तक के बच्चों को लगाए जा रहे हैं टीके। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।